एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद अहम विषय पर बात करने वाले हैं, खुशहाली, हैप्पीनेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, शायद आजकल कुछ ज्यादा ही।
बिल्कुल, और आज हम इसे एक खास नजरिए से देखेंगे। डॉक्टर टिम लोमस की किताब है हैप्पीनेस, और उनका जो रिसर्च है उस पर बात करेंगे। ये किताब इस बात पर काफी जोर देती है कि जिसे हम खुशी कहते हैं ना, पश्चिम की जो समझ है इसे लेकर, वो शायद थोड़ी सीमित है, अधूरी भी हो सकती है, खास तौर पर जब हम इसे जीवन में अपने रोल या अपने लक्ष्य से जोड़ते हैं।
हाँ, ये बात तो है। एक अजीब सी कश्मकश है आजकल। एक तरफ देखो तो खुशहाली पर इतना फोकस है, इतनी बातें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चिंता, तनाव, ये सब बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम जितना खुशी के पीछे भाग रहे हैं वो उतनी ही दूर।
हाँ, दूर जा रही है। तो सवाल उठता है कि कहीं दिक्कत हमारी खुशी की परिभाषा में ही तो नहीं। और लोमास इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो हमें दुनिया भर की संस्कृतियों से मिलवाते हैं जहां खुशहाली के मायने बहुत अलग हैं, बहुत रंगीन हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं, इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। पहले ये बताएं कि ये डॉक्टर टिम लोमास है कौन।
हाँ, तो डॉक्टर टिम लोमास यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी सकारात्मक मनोविज्ञान के सीनियर लेक्चरर हैं, और वेलबींग मतलब कुशल क्षेम के एक क्षेत्र में एक जाने माने रिसर्चर हैं।
अच्छा,
लेकिन उनकी खास बात यह है, जैसे मैंने कहा, कि वो सिर्फ वेस्टर्न साइकोलॉजी के दायरे में नहीं सोचते। वो पॉजिटिव लेक्सिकोग्राफी प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं।
पॉजिटिव लेक्सिकोग्राफी, ये क्या चीज है?
ये एक बहुत ही मतलब यूनिक पहल है। इसमें दुनिया भर की भाषाओं से कुशल क्षेम से जुड़े ऐसे शब्द इकट्ठे किए जा रहे हैं जिनका सीधा सीधा अनुवाद अंग्रेजी में या शायद कई और भाषाओं में भी मुमकिन नहीं है।
अरे वाह,
सोचिए, 1000 से ज्यादा ऐसे शब्द हैं 50 से ज्यादा भाषाओं से। ये शब्द दिखाते हैं कि इंसानी अनुभव, हमारी वेल बीइंग, उसके कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा की सीमाओं की वजह से शायद समझ ही नहीं पाते।
ये तो कमाल है। इसका मतलब हुआ कि उनका नजरिया सिर्फ साइकोलॉजी नहीं बल्कि उसमें भाषा विज्ञान, क्रॉस कल्चरल स्टडीज, सब कुछ मिलावा है। जहां ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट शायद यूनिवर्सल सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं, लोमस इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, वो कैसे हमारे अनुभव को, हमारे जीने के तरीके को, यहाँ तक कि हमारे लक्ष्यों को शेप देती है।
निश्चित रूप से उनका काम एक तरह से मनोविज्ञान में जो अंग्रेजी केंद्रित सोच है, जो बायस है, उसे चैलेंज करता है। वो सिर्फ पुराने ज्ञान को दोहरा नहीं रहे बल्कि दुनिया भर से ज्ञान लाकर इस फील्ड को, इस समझ को और गहरा बना रहे हैं। उनकी बैकग्राउंड भी मजेदार है। साइकोलॉजी तो है ही, साथ में फिलॉसफी, धर्मों का अध्ययन, और वो खुद भी 20 साल से ज्यादा से मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच है।
तो अब आते हैं किताब पर, हैप्पीनेस। ये MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। तो ये किताब आखिर है किस बारे में? आपने क्या ये कोई खुश कैसे बने गाइड नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बुनियादी सवाल पूछती है कि भाई ये खुशी आखिर है क्या चीज, और क्या यही वो अल्टीमेट गोल है जिसके पीछे हमें भागना चाहिए? अपनी भूमिका, अपना लक्ष्य, क्या वो सिर्फ खुश होना है?
अच्छा,
हाँ, ये किताब हमारी उस आम धारणा को तोड़ती है कि खुशी का मतलब है बस हर वक्त अच्छा महसूस करना। लोमास कहते हैं कि ये समझ बहुत सतही है और कल्चरली भी बहुत नैरो है, मतलब संकीर्ण है। असली कुशल क्षेम, या जिसे वो फ्लरिशिंग कहते हैं, फलना फूलना, वो कहीं ज्यादा बड़ा कैनवस है। उसमें आनंद तो है पर साथ में जीवन में अर्थ ढूंढना भी है। दूसरों से जुड़ाव, पर्सनल ग्रोथ, और यहां तक कि मुश्किलों और दुख का सामना करना भी उसका हिस्सा है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, अपनी भूमिका को सार्थक रूप से निभाने का नजरिया है।
नापने की कोशिश में, जैसे 1 से 10 तक में आप कितने खुश हैं, हमने उसके गहरे मतलब खो दिए हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी इमोशनल और वैचारिक वोकैबुलरी बढ़ाने की जरूरत है, और इसके लिए हमें अंग्रेजी या सिर्फ वेस्टर्न सोच से बाहर झांकना होगा।
हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये किताब हमें खुशी के विज्ञान और दर्शन की एक क्रिटिकल, एविडेंस बेस्ड और सबसे जरूरी एक ग्लोबल समझ देती है। ये सिर्फ पॉजिटिव पर फोकस नहीं करती बल्कि जीवन की पूरी सच्चाई को, उसकी जटिलताओं, चुनौतियों, उसके कॉन्टेक्स्ट को अपनाने वाले कुशल क्षेम के विज्ञान की बात करती है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, वो विरोधाभास। एक तरफ खुशी पाने की इतनी कोशिश और दूसरी तरफ बढ़ती चिंता, बेचैनी। लोमास कहते हैं कि अंग्रेजी का शब्द हैप्पीनेस ही बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये पल भर के मजे प्लेजर और जीवन की गहरी संतुष्टि या फुलफिलमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है।
सही, और यहीं से वो दिक्कत शुरू होती है दो सीमित पश्चिमी नजरिए की। इसे और साफ करने के लिए लोमास दो मुख्य ग्रीक फिलोसफिकल ट्रेडिशंस का जिक्र करते हैं।
हाँ।
पहली है हेडोनिया। ये एपिक्यूरिस जैसे दार्शनिकों से जुड़ा विचार है। इसका मतलब है खुशी, यानी सुख की मौजूदगी और दर्द का ना होना। मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करो, बुरे एहसासों से बचो। ये आज की कंज्यूमर कल्चर और शुरुआती पॉजिटिव साइकोलॉजी में काफी हावी रहा है।
ओके, और दूसरी?
दूसरी है यूडेमोनिया। ये अरस्तु से जुड़ा विचार है और ये खुशी को सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जीने का एक सार्थक तरीका मानता है। इसमें सद्गुणों यानी वर्चूज के साथ जीना, अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और उसे इस्तेमाल करना, जीवन में एक बड़ा अर्थ या पर्पस खोजना और समाज में योगदान देना, ये सब शामिल है। ये सिर्फ फीलिंग गुड नहीं बल्कि लिविंग वेल है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, अपनी भूमिका को समझना और निभाना। लोमास मानते हैं कि जीवन में दोनों का बैलेंस जरूरी है। हेडोनिया भी चाहिए, मजे भी जरूरी है, लेकिन यूडेमोनिया कुशल क्षेम का ज्यादा गहरा और टिकाऊ आधार है।
ये हेडोनिया और यूडेमोनिया की बात तो ठीक है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, लेकिन लोमास का असली कंट्रीब्यूशन शायद ये दिखाना है कि दुनिया में वेलबींग के और भी बहुत से रंग हैं जिनके लिए हमारे पास शायद शब्द ही न हो। यहीं पर वो आपका पॉजिटिव लेक्सिकोग्राफी प्रोजेक्ट आता है ना?
बिल्कुल, यहीं पर वो आता है। कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे अलग अलग कल्चर वेलबींग को समझते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में या हिंदी में भी शायद एक शब्द ना हो। जैसे डेनमार्क का शब्द है हिगे, हुगा।
हुगा?
हाँ, हुगा। ये सिर्फ आराम या कोजीनेस नहीं है, ये दोस्तों या परिवार के साथ एक गर्म जोशी भरा, सुरक्षित, संतोषजनक माहौल महसूस करने की फीलिंग है। जैसे सर्दियों की शाम हो, आप अपनों के साथ बैठे हों, गर्म चाय पी रहे हों, सुकून से बातें कर रहे हों, वो जो फीलिंग है वो है हुगा।
अच्छा, बहुत अच्छा।
या फिर जापान का इकिगाई।
इकिगाई? हाँ, ये सुना है।
हाँ, काफी पॉपुलर हुआ है। इसका मतलब है जीने का एक कारण होना, एक उद्देश्य जो आपको संतुष्टि दे, वो वजह जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा दे। या आपकी भूमिका, आपके लक्ष्य, आपकी पसंद, सबका एक संगम है।
और
फिनलैंड का सीसू। ये सिर्फ हिम्मत नहीं है, यह है बहुत मुश्किल विपरीत परिस्थितियों में भी असाधारण दृढ़ संकल्प दिखाना, गजब की सहन शक्ति, हार न मानने वाली अंदरूनी ताकत।
वाह, सिसु।
और जापान का ये एक और अद्भुत विचार है वाबी साबी। ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है जो क्षणभंगुरता, इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता को स्वीकार करता है, अधूरी, पुरानी, अस्थायी चीजों में एक खास तरह की सुंदरता ढूंढना। जैसे कोई पुरानी मिट्टी की प्याली है, थोड़ी टूट गई है, उसमें भी एक खूबसूरती देखना।
ये तो बहुत गहरा है वाबी साबी।
और एक और उदाहरण पुर्तगाल का सौदादे। ये एक मीठी सी उदासी भरी याद या तीव्र इच्छा है किसी ऐसे इंसान, जगह या अनुभव के लिए जो अब नहीं है। इसमें थोड़ा दुख है पर एक अजीब सी मिठास भी है।
सौदा दे। ये सारे उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि कुशल क्षेम के कितने अलग अलग फ्लेवर्स हैं, कितने स्वाद हैं, जो सिर्फ हेडोनिया यूडेमोनिया के वेस्टर्न बंटवारे से कहीं आगे हैं। और ये बात कि भाषा हमारे अनुभव को कैसे बनाती है, ये भी साफ होता है।
बिल्कुल। और आप सोचिए, अगर परिभाषा पर ही इतनी विविधता है तो फिर इसे मापें कैसे? लोमास जो सबसे कॉमन तरीका है सेल्फ रिपोर्ट सर्वे, कि 1 से 10 के स्केल पर आप कितने खुश हैं, उसकी काफी आलोचना करते हैं।
हाँ, उसकी क्या दिक्कतें हैं?
कई दिक्कतें हैं। पहली तो व्यक्तिपरकता। मेरा 7 आपके 9 के बराबर हो सकता है या आपके 5 के, कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
सही।
दूसरा, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, कल्चरल बायस। ये सवाल ही वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्ट सोच पर आधारित है कि मेरी पर्सनल खुशी सबसे जरूरी है। हो सकता है किसी कलेक्टिविस्ट कल्चर में परिवार की खुशी या समूह की भलाई या अपनी सामाजिक भूमिका ठीक से निभाना ज्यादा मायने रखता हो। उनसे ये सवाल पूछना शायद उनकी असलियत पकड़े ही ना।
ये बात तो है।
तीसरा, स्मृति पूर्वाग्रह, मेमोरी बायस। हम याद करके बताते हैं कि हम कितने खुश थे, और हमारी यादें अक्सर धोखा देती हैं। हमें अक्सर सबसे तेज अनुभव, पीक और अंत याद रहता है, बीच का बहुत कुछ भूल जाते हैं। डैनियल कैनेमन का पीक एंड रूल।
अच्छा।
लोमास दूसरे तरीकों की भी बात करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस सैम्पलिंग, दिन में कई बार पूछना कि अभी कैसा लग रहा है, या शारीरिक माप जैसे स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल का लेवल, लेकिन मानते हैं कि कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है। निचोड़ यह है कि हम जिस तरह से मापते हैं वही हमारे नतीजों को बहुत हद तक तय कर देता है।
अब बात करते हैं खुशी के कारणों की। एक वो मशहूर सा हैप्पीनेस पाई चार्ट है ना, 50% जेनेटिक्स, 10% हालात, 40% हमारी कोशिशें।
हाँ, लोमाज उसे सिरे से खारिज करते हैं, कहते हैं ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है, असलियत कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरैक्टिव है।
तो फिर क्या है असलियत?
देखिए, जेनेटिक्स एक बेसलाइन या सेट पॉइंट जरूर देता है। कुछ लोग नेचुरल तौर पर ज्यादा खुशमिजाज हो सकते हैं, लेकिन ये किस्मत नहीं है, इसे बदला जा सकता है।
ओके।
परिस्थितियां जैसे इनकम, हेल्थ, रिश्ते बिल्कुल मायने रखती हैं, लेकिन हम अक्सर हेडोनिक ट्रेडमिल का शिकार हो जाते हैं। मतलब हम नई परिस्थितियों के, चाहे अच्छी हों या बुरी, बहुत जल्दी आदि हो जाते हैं और अपनी खुशी के पुराने लेवल पर लौट आते हैं।
हाँ, ये तो होता है, नई गाड़ी लो कुछ दिन खुशी, फिर नॉर्मल।
बिल्कुल, पैसा भी एक हद तक ही खुशी बढ़ाता है, जहां तक बेसिक जरूरतें पूरी हों, थोड़ी सिक्योरिटी मिले, उसके बाद उसका असर बहुत कम हो जाता है। सबसे जरूरी और टिकाऊ फैक्टर है सामाजिक रिश्तों की क्वालिटी और गहराई, और वो 40% वाला हिस्सा जानबूझकर की गई गतिविधियां।
हाँ, जानबूझकर की गई गतिविधियां जैसे ग्रैटिट्यूड जताना, दूसरों की मदद करना, मेडिटेशन, मीनिंगफुल गोल्स पर काम करना, ये जरूर असरदार हो सकती हैं। लेकिन ये बहुत निर्भर करता है कि वो एक्टिविटी उस इंसान के लिए कितनी मीनिंगफुल है और उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कितनी फिट बैठती है। जो एक के लिए काम करे, जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी करे।
और सबसे बड़ी बात, लोमाज ये कहते हैं कि ये अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, ये सब एक डायनामिक सिस्टम की तरह हैं, सब एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। अच्छे रिश्ते आपकी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं, आपको मीनिंगफुल काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, जो शायद आपके जेनेटिक झुकाव पर भी असर डाले।
ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। अच्छा, तो फिर ये खुशी महसूस करने की क्षमता हमारे पास है ही क्यों? इसका मकसद क्या है? एवोल्यूशनरी पर्पस।
यहां लोमास बारबरा फ्रेडरिक्सन के बहुत प्रभावशाली सिद्धांत ब्रॉडन एंड बिल्ड, विस्तार और निर्माण सिद्धांत का जिक्र करते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि पॉजिटिव इमोशंस का एक बहुत महत्वपूर्ण कामया लक्ष्य है।
क्या?
पहला, ब्रॉडन, विस्तार। नेगेटिव इमोशंस जैसे डर या गुस्सा हमारे ध्यान को सिकोड़ देते हैं ताकि हम खतरे पर फोकस कर सकें। इसके उलट पॉजिटिव इमोशंस, खुशी, जिज्ञासा, प्यार, आभार, हमारी सोच और संभावनाओं के दायरे को फैलाते हैं। वो हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं, नए अनुभवों के लिए खोलते हैं, दूसरों से जुड़ने में मदद करते हैं।
अच्छा, ये ब्रॉडन हुआ, और बिल्ड?
बिल्ड, निर्माण। समय के साथ ये जो फैली हुई मानसिकता है, ये हमें स्थायी व्यक्तिगत संसाधन बनाने में मदद करती है, जैसे नया ज्ञान और स्किल सीखना, फिजिकल हेल्थ बेहतर करना, और सबसे जरूरी, मजबूत सोशल बॉन्ड बनाना। और ये सारे संसाधन भविष्य में हमें मुश्किलों से निपटने और जीवन में फलने फूलने में मदद करते हैं।
ये तो पॉजिटिव इमोशंस की बात हुई।
हाँ, लेकिन यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात आती है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो है नाखुशी या नेगेटिव इमोशंस की भूमिका। वो भी उतनी ही फंक्शनल और जरूरी हैं।
नेगेटिव इमोशंस, वो कैसे?
उनका भी एक बहुत अहम रोल है। उदासी हमें बताती है कि हमने कुछ खोया है, चिंता हमें भविष्य के खतरे से आगाह करती है, गिल्ट हमें बताता है कि हमने कोई नैतिक गलती की है या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये भावनाएं हमें जरूरी फीडबैक देती हैं, हमें सचेत करती हैं, बदलने, सीखने, सुधारने के लिए प्रेरित करती हैं, शायद हमें सही रास्ते या सही लक्ष्यों की तरफ वापस लाती हैं। सोचिए, बिना नेगेटिव इमोशंस के जीवन कितना खतरनाक और शायद दिशाहीन हो सकता है।
हाँ, ये सोचने वाली बात है। हम हमेशा नेगेटिव फीलिंग से बचना चाहते हैं, तो अगर खुशी और नाखुशी दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और जरूरी हैं, तो फिर एक अच्छा, एक सार्थक जीवन कैसे जिया जाए?
यहीं पे लोमास पीछा करने के विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ पर्स्यूट की बात करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग सीधे सीधे डेस्परेटली खुशी के पीछे भागते हैं, मुझे बस खुश होना है कैसे भी, वो अक्सर उसे खुद से और दूर कर देते हैं। इससे एक लगातार कमी महसूस होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, मुझमें क्या गड़बड़ है।
तो फिर क्या करें?
लोमास एक अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण, इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाने की सलाह देते हैं। मैं खुश कैसे हो सकता हूं, ये पूछने के बजाय खुद से पूछें, मैं एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और जुड़ा हुआ जीवन कैसे जी सकता हूं, मेरी भूमिका क्या है और मैं उसे कैसे निभा सकता हूं।
अच्छा, फोकस बदलो।
हाँ, फोकस बदलो, उन प्रोसेसेस और एक्टिविटीज पर ध्यान दो जिनसे खुशहाली नेचुरली एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर उभरता है, जैसे अपने रिश्तों को संवारना, उन्हें समय देना, ऐसी एक्टिविटीज में पूरी तरह डूब जाना जो आपको मीनिंगफुल लगती हैं, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना, माइंडफुलनेस, जीवन की सच्चाइयों को, इम्परफेक्शन को स्वीकार करना, ग्रैटिट्यूड, दयालुता जैसे गुणों को डेवलप करना। जब हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो खुशी अक्सर खुद ब खुद आ जाती है, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।
ये बहुत रिलीविंग बात है। अच्छा, तो चलिए अब कुछ मुख्य संदेशों को समेटते हैं जो इस पूरी बातचीत से निकले हैं। पहला और शायद सबसे अनोखा थीम, भाषा हमारी हकीकत को बनाती है। हमारी वोकैबुलरी हमारे अनुभव को लिमिट कर सकती है या बढ़ा सकती है। दूसरी संस्कृतियों से नए शब्द सीखना हमारी इमोशनल दुनिया को बढ़ा कर सकता है। जैसे आपने वो शब्द बताए, हुगा, इकिगाए, सीसू, वाबीसाबी, सौदादे, या जैसे हिंदी में संतोष है, अपनापन है, सेवा है, शायद इनका कोई परफेक्ट अंग्रेजी शब्द ना हो।
बिल्कुल। दूसरा मुख्य थीम है, सिर्फ हेडोनिया यानी सुख के पीछे मत भागो, यूडेमोनिया यानी सार्थक जीवन को अपनाओ। जीवन में अर्थ, उद्देश्य, ग्रोथ, अपनी भूमिका निभाना, यहां तक कि संघर्ष का सामना करना, ये सब गहरे कुशलक्षेम के लिए जरूरी है। ये भारतीय कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत रिलेटेबल है। अपने कर्तव्य यानी धर्म का पालन करना, परिवार समाज की जिम्मेदारियां निभाना, मुश्किलों से लड़कर मजबूत बनना, ये सिर्फ फील गुड से कहीं ज्यादा है।
तीसरा अहम संदेश, मनोविज्ञान में कल्चरल ह्यूमिलिटी यानी सांस्कृतिक विनम्रता जरूरी है। ये मानना कि वेस्टर्न आइडियाज ही सब कुछ नहीं है। दुनिया भर की संस्कृतियों के पास वेलबींग के बारे में सिखाने के लिए बहुत कुछ है। हमें सोचना चाहिए कि भारतीय दर्शन, योग, वेदांत, बौद्ध धर्म, वो खुशी और कुशलक्षेम को कैसे देखते हैं। शायद वो ज्यादा होलिस्टिक हो।
सही कहा। चौथा थीम, जीवन की जटिलता और डार्क साइड को स्वीकार करो। खुशी का कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। नेगेटिव इमोशंस बेकार नहीं है, वो जरूरी हैं हमारे विकास के लिए, अर्थ ढूंढने के लिए, रेजिलियंस बनाने के लिए। जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख दोनों को अपनाना ही एक बैलेंस्ड जीवन है।
और पांचवा थीम जो पहले भी आया, खुशी की अप्रत्यक्ष खोज। सीधे खुशी के पीछे भागने के बजाय उन प्रोसेसेस पर फोकस करो जो उसे संभव बनाती हैं। रिश्ते, मीनिंगफुल काम, अपने वैल्यूज के हिसाब से जीना, ये भी इंडिया में बहुत लागू होता है। करियर हो, परिवार हो, समाज सेवा हो, अक्सर प्रोसेस को एंजॉय करना, अपनी भूमिका अच्छे से निभाना एंड रिजल्ट से ज्यादा संतोष देता है।
हाँ, लोमास की बातों का सार कुछ मुख्य विचारों में समझ सकते हैं। ये उनके डायरेक्ट कोट्स नहीं, पर उनके तर्कों का निचोड़ है।
बताइए।
पहला, हमें इमोशनल लेक्सिकोग्राफर यानी भावनात्मक कोशकार बनने की जरूरत है। दूसरी भाषाओं के वो शब्द जिनका अनुवाद मुश्किल है, वो सिर्फ लिंग्विस्टिक क्यूरियोसिटी नहीं है, वो फलने फूलने के अलग अलग तरीकों की खिड़कियां हैं। उन्हें जानना हमारे अनुभव को समृद्ध करता है। दूसरा, खुशी कोई फिक्स्ड मंजिल नहीं, बल्कि एक डायनामिक उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया है। ये एक मीनिंगफुल कनेक्टेड जीवन जीने का नतीजा है, जो दुख और चुनौतियों समेत पूरे जीवन को स्वीकार करता है। ये हर पल अच्छा महसूस करना नहीं है।
तीसरा, खुशी को 1 से 10 के स्केल पर नापना वैसा ही है जैसे किसी सिम्फनी को एक नंबर दे देना।
ये एक रिच मल्टी डायमेंशनल अनुभव को एक सिंगल भ्रामक डेटा पॉइंट में कैद कर देता है, उसकी गहराई छुपा देता है।
चौथा, एक सच्चा पॉजिटिव साइकोलॉजी वो नहीं जो नेगेटिव को इग्नोर करे, बल्कि वो है जो जीवन में उसकी जरूरी और रचनात्मक भूमिका को समझे। दुख या मुश्किल अच्छे जीवन का उल्टा नहीं है, अक्सर ये वो भट्टी है जिसमें अर्थ, रिजिलियंस, करुणा और चरित्र जैसे गुण निखरते हैं। और एक और निष्कर्ष जो उनके काम से निकल का है, हमारी इमोशनल वोकैबुलरी की सीमाएं हमारे अनुभव की सीमाएं बन जाती हैं। जितने कम शब्द होंगे अपनी फीलिंग्स को समझने और बताने के लिए, उतना ही सीमित हमारा अनुभव होगा। ये सब बहुत सोचने लायक बातें हैं। तो इन विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स?
हाँ जरूर। व्यक्तिगत स्तर पर हम अपने इमोशनल गोल्स को थोड़ा ब्रॉड कर सकते हैं। सिर्फ हैप्पी होने के बजाय हम हिग्गे जैसा माहौल बनाने या अपना इकिगाई ढूंढने और जीने का लक्ष्य रख सकते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स को दुश्मन न समझकर उनसे पूछ सकते हैं, तुम क्या बताने की कोशिश कर रही हो। और वो इनडायरेक्ट रास्ता अपना सकते हैं, रिश्तों पर ध्यान देना, मीनिंगफुल काम या हॉबी में लगना, अपने वैल्यूज के हिसाब से जीना, मुश्किलों में भी कुछ सीखने का मौका ढूंढना, जिसे बेनिफिट फाइंडिंग कहते हैं।
और दूसरों के साथ इंटरैक्शन में,
दूसरों के साथ हम अलग अलग कल्चर के लोगों को ज्यादा एम्पथी से सुनने की कोशिश कर सकते हैं, ये समझते हुए कि उनकी खुशी की समझ हमसे अलग हो सकती है, उनके लक्ष्य, उनकी भूमिकाएं अलग हो सकती हैं। पेरेंटिंग में भी बच्चों की सिर्फ फौरी खुशी पर फोकस करने के बजाय उनमें रिजिलियंस, मीनिंग ढूंढने की क्षमता, एम्पथी, अच्छा कैरेक्टर बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए ज्यादा जरूरी है।
और बड़े लेवल पर समाज के लिए,
समाज के लेवल पर भी इसके इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे वर्कप्लेस में वेलबींग का मतलब सिर्फ फन एक्टिविटीज नहीं, बल्कि एम्प्लॉयज को ऑटोनोमी देना, सीखने के मौके देना, उनके काम को पर्पस से जोड़ना, ये सब यूडेमोनिया और सार्थक भूमिका से जुड़ता है। और देशों को भी सिर्फ GDP से आगे बढ़कर सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के मेजर्स पर ध्यान देना होगा, जैसे भूटान की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की सोच है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे अहम बात रही वो शायद भाषा की ताकत है, कैसे शब्द हमारे अनुभव को बनाते हैं, और दूसरा नेगेटिव इमोशंस का फंक्शनल होना, कि वो भी हमारे गाइड हैं, और ये कि हर वक्त खुश होना ज़रूरी नहीं है एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, ये जानकर बहुत सुकून मिला।
हाँ, और मेरे लिए वो कल्चरल ह्यूमिलिटी वाली बात सबसे अहम रही, ये मानना कि ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, वेस्टर्न फ्रेमवर्क ही सब कुछ नहीं है। दुनिया भर की संस्कृतियों से सीखने पर वेलबींग की कितनी गहली समझ मिलती है, ये जानना आंखें खोलने वाला था। और प्रैक्टिकली वो सोच में बदलाव कि खुशी का पीछा छोड़ो, एक मीनिंगफुल कनेक्टेड लाइफ बनाने पर फोकस करो, ये ज्यादा असरदार और संतोषजनक लगता है।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, आपकी अपनी भाषा में या आपके अपने अनुभव में ऐसा कौन सा एहसास या स्थिति या शायद कोई भूमिका या कर्तव्य है जिसका ठीक ठीक अनुवाद अंग्रेजी या मानक हिंदी में नहीं होता, पर वो आपके लिए कुशल क्षेम या एक अच्छे सार्थक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।